हम डॉक्टर राजीव वाधवा जी का भी स्वागत कर लेते हैं, वेलकम बैक कहते हैं उनको और गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक डॉक्टर साहब।
गुड मॉर्निंग अम्बा जी, आपको भी और सभी सुनने वालों को भी।
चलिए, सबकी तरफ से आपको भी और आपकी इतनी सारी जो बहनें बन चुकी हैं प्रोग्राम के जरिए, उन सबकी तरफ से भी आपको पिछले हफ्ते के लिए थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। एंड जो भाई बन चुके हैं उनकी तरफ से भी बहुत थैंक यू, यानी हमारे लिसनर्स की तरफ से। तो चलिए, आज स्कैल्प एंड हेयर इश्यूज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारे पास सवाल भी बहुत आते रहे हैं और लोगों की गुजारिश भी थी कि इस बारे में भी बात किया जाए, तो आज इसको पकड़कर बहुत ही अच्छा किया आपने।
जी अम्बा जी, तो ये स्किन से ही संबंधित है, तो बालों के बारे में बात करते हैं। बाल जैसा हम चाहते हैं कि चाहे वो मेल हो या फीमेल, आदमी हो या महिलाएं हो, सबको ही चाहत होती है कि उनके बाल घने हों, लंबे हों और काले भी रहें, सफेद ना हों। तो उसको लेकर जब उसमें कोई चेंज आता है तो फिर जाहिर है कि अधिकतर लोग कुछ परेशान होते हैं उसके लिए। कुछ लोग को फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं अच्छा चलो गंजे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, दे डोंट माइंड इट। बट बहुत लोग होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं। पुरुषों में भी होता है ऐसा, और लेकिन महिलाओं में शायद कुछ ज्यादा होता हो कि अगर बाल कम हो रहे हैं या हल्के हो रहे हैं तो उनको जो है थोड़ी उससे तकलीफ होती है। तो उसमें दो तीन तरह की बीमारियां हैं और मेन ये है कि अधिकतर ये बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल पैटर्न है, और कहाँ पर आपको उसे एक्सेप्ट करना है और कहाँ पर ये मानकर चलना है कि इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि मैं अपने मरीजों में देखता हूँ, अपने परिवार के लोगों में देखता हूँ कि बालों को लेकर मेडिकल प्रॉब्लम आम तौर पर कम होती है, लेकिन वो जाहिर है कि चाहते हैं कि उनके बाल अगर झड़ रहे हैं तो ना झड़े, हल्के पतले हो गए हैं तो घने हो जाएं, या अगर कोई गंजापन आ गया है तो वो दूर हो जाए। और उसको लेकर फिर चूंकि ये कोई अधिकतर कोई बीमारी नहीं होती है तो उसकी भी कोई दवा भी नहीं होती है, तो वो फिर दूसरी चीजें ढूंढने निकलते हैं। तो वो फिर डाइट के लिए सोचते हैं कि मैं क्या खाऊं या ना खाऊं, या वो फिर तरह तरह के तेल, तरह तरह के लोशन, विटामिन्स और तमाम तरह की दूसरी थेरेपी में, जिसका आमतौर पर कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है, तो चाहे वो होम्योपैथिक है, कोई देसी दवाई है, यूनानी है, चाइनीज है, जापानीज है, और तरह तरह की दवाइयां लोग, और उसमें कई बार हजारों, सैकड़ों भी नहीं, हजारों पाउंड भी वो लगाते हैं,
बहुत
लगाते हैं। तो मेरा उसमें ये कहना है कि पहले तो आप उसका मेडिकल रीजन देख लें, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जिनसे बालों पर असर पड़ता है। तो पहले आपके बाल कम हो रहे हैं या कोई गंजापन हो रहा है तो पहले आप अपने डॉक्टर से बात करें कि इसका कोई मेडिकल रीजन तो नहीं है, कोई टेस्ट वगैरह करने हैं तो वो कराएंगे, और अगर डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है तो फिर आपको अपनी खुशी के लिए आप जो मर्जी करें, आपका पैसा है जितना मर्जी, लेकिन उसे इलाज के तौर पर आप पैसा बर्बाद ना करें और गलत सलाह ना लें, ये हम आज खास तौर पर बात करेंगे।
ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले दो चीजें जो हैं, एक तो अपने लिसनर्स को मैं याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपके पास कोई सवाल है तो एक लाइन ना भेजें कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस और दैट, आपका सवाल कंप्लीट नहीं है। सवाल हमें पूरा चाहिए, कंप्लीट क्वेश्चन चाहिए, ताकि सवाल का जवाब उस तरह से दिया जा सके। और दूसरा ये कि जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, हम देसी विदेशी कोई भी चीज, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वो एक अलग चीज हो जाती है। तो चलिए, अब डॉक्टर साहब की तरफ मैं मुड़ रही हूं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है जब आप अपना सवाल भेजें, बराए मेहरबानी इसके बारे में जानना है या उसके बारे में ना कहें, आपका जो सवाल है उसे जरा सा स्पेसिफाई करें, क्लैरिफाई करें, ताकि सवाल का जवाब उस तरह से दिया जा सके। और अगर हो सके तो 11:40 से पहले पहले अपना सवाल हम तक पहुंचा दें। आफ्टर 11:40 इट विल हैव टू बी health@sabrasradio.com या फिर खत के जरिए। तो चलिए, ये दो बातें श्रोताओं को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना जरूरी था, क्योंकि एक दो सवाल पहुंचे इसके बारे में जानना है या उसके बारे में, तो क्या बताएं उसके बारे में, सवाल क्लियर हो तो तब जवाब दिया जा सकता है कि नहीं डॉक्टर साहब?
जी अम्बर जी, तो जो कुछ सवाल पहले पहुंचे हैं उनमें से एक तो काफी ये परेशान करने वाला सवाल भी है जिन लोगों को होता है, तो लेकिन उसका जवाब जो है वो बहुत आसान है, तो पहले उसे ही ले लेते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि ग्रे हो रहे हैं या सफेद हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? तो आम तौर पर इसका अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो बाल सफेद होना या ग्रेइंग शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में ये काफी देर से होता है, तो आप कुछ लोगों को देखेंगे कि उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल है, फिर भी उनके काफी सारे काले बाल हैं। और कुछ आप देखेंगे कि लोगों में ये 30 साल की उम्र से ही सफेद बाल थोड़े थोड़े आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये एक प्राकृतिक चीज है, नेचुरल चीज है, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये वो उन चीजों में से है जिसका इलाज कोई नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है। इसे हम ये नहीं कहेंगे कि आपके बाल सफेद हो गए हैं तो इसका मतलब आप बीमार हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। और आप उसका और जो उसके लिए करना चाहें, कोई डाई करना चाहें, हेयर ट्रीटमेंट करना चाहें तो करें, लेकिन वो टेम्परेरी मान कर कि जो आपके बाल आपको दिख रहे हैं वो आपने कलर कर लिए या डाई कर लिए, ये मान कर ना चलें, और ना ही किसी की बात माने कि वो ऐसा कोई इलाज कर देंगे कि आपके अंदर से बाल आने फिर काले शुरू हो जाएंगे। जो बाल सफेद हो गए उनका दोबारा काला होना ना के बराबर है, और ये आम तौर पर नहीं होता है। तो इसमें चूंकि लोग काफी परेशान होते हैं और काफी पैसा खर्च करते हैं, तो आप पैसा खर्च करें, आप अच्छे से अच्छे पार्लर में जाना चाहें, वहां पर आप जाएं, वहां की अच्छी सर्विस को एंजॉय करें, एक एक्सपीरियंस होता है अपने आप में, तो उसको एंजॉय करने के लिए आप जो मर्जी करें, लेकिन ये सोच के ना करें कि इससे मेरा इलाज हो जाएगा। कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है, किसी तेल से आज तक कभी किसी के बाल काले नहीं हुए। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उनको डाई करना या कलर करना ही एक इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखें, और बाकी ये पक्का है कि किसी ने अगर इसका इलाज ढूंढ लिया कि किसी के बाल सफेद हों और वो दोबारा से काले हो जाएं, तो जाहिर है कि या तो उनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, या फिर वो अरबों खरबों रुपए कमा रहे होंगे उससे। वो किसी छोटी मोटी दुकान से कोई छोटा मोटा तेल नहीं बेच रहे होंगे, तो अगर ऐसा कोई बेच रहा है तो वो जाहिर है कि गलत है। तो एक तो ये है कि अंबा जी ग्रे हेयर के बारे में, जो बाल सफेद होते हैं। दूसरी जो परेशानी होती है उसे हम कहते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस। बॉल्डनेस माने गंजापन, और मेल पैटर्न माने आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए, मर्दों के लिए। तो आम तौर पर ये लगभग सभी पुरुषों में, आदमियों में किसी न किसी उम्र पर जरूर होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम जानते हैं कि ये पुरुषों के बाल कम होते हैं, और किसी के 30 साल की उम्र पर भी कम होने शुरू हो जाते हैं, और किसी के 60-70 साल की उम्र में जाकर होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तो आमतौर पर ये जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, जो पुरुषों की जो गंजापन होता है, ये टेम्पल्स पर, हमारे सिर के साइड पर, कानों के पीछे और कानों के ऊपर की तरफ, वहां पर पहले आपके बाल धीरे धीरे कम होने शुरू होते हैं, और फिर आपके उसी समय या उसके थोड़े समय बाद आपके सिर के बिल्कुल टॉप के ऊपर पीछे की तरफ वहां पर बाल कम होने शुरू होते हैं, और आपके मिडल में, स्कैल्प में जो है एक बॉल्ड पैच, गंजापन जो है शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे जो साइड का है वो पीछे को बढ़ता है, और जो टॉप का है वो बढ़ता है बीच में, और फिर आमतौर पर ये दोनों जो गंजेपन के एरिया हैं ये जुड़ जाते हैं, और आमतौर पर सामने थोड़े से बाल रह जाते हैं और पीछे की तरफ रह जाते हैं एकदम, और बीच में गंजापन हो जाता है, और धीरे धीरे फिर ये उम्र के साथ और कम होते जाते हैं। ये अंबर जी सबको होता है, 60 साल की उम्र के बाद शायद ही आपको कोई पुरुष दिखे जिसमें चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन ऐसा गंजापन ना हो, जिसके बाल, जिसका माथा चौड़ा ना हो गया हो, और टेम्पल्स के ऊपर सिर के साइड पर उनके बाल कम ना हो गए हों। लेकिन कई बार जो है ये कम उम्र में शुरू हो जाता है, कुछ कुछ लोगों में हम देखते हैं कि वो 20, 22, 25 साल के आसपास हो जाता है। अगर आप 30 साल के लोगों को देखें और उनका सर्वे करें, 30 साल की उम्र के आदमियों का, और तो आप पाएंगे कि 30% उसमें से लोगों को, 100 में से 30 या 10 में से 3 लोगों को 30 साल की उम्र पर जो है काफी अच्छा खासा गंजापन शुरू हो चुका होता है कि उनके बाल कम हो रहे हैं। और अगर आप 50 साल से ऊपर के लोगों को देखें तो आधे या उससे ज्यादा लोगों को ये गंजापन होता है। तो ये होना ही है, ये इनएविटेबल है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं।
भले एक इतफाक है कि अभी अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि आगे का गंजापन जो है बढ़ता जाता है और पीछे के बाल जो है वो रह जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल है, लेकिन ये एक महिला की तरफ से है
जी।
और जहां आपने ये जिक्र किया तो सोचा कि इस सवाल को यहीं बता देती हूं ताकि आगे आपको जहां सही लगे आप उस हिसाब से इसके बारे में बता सकें। इनका कहना है कि इनकी उम्र जो है ये 60 के आसपास है और आगे के बाल, लेडी हैं, आगे के बाल इनका कहना है कि ऑलमोस्ट जा चुके हैं, कोई कोई हेयर स्ट्रैंड है, बट पीछे के जो बाक हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द हेड, वो बाल अभी भी उनके हैं, बाकी हैं। तो इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर दैट, बिकॉज आई फाइंड इट वेरी एम्बैरेसिंग स्पेशली बीइंग अ वुमन, उनका कहना है आई फील रियली अपसेट एट टाइम्स, सो इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर दैट?
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं. जैसा मैंने कहा कि पुरुषों को भी काफी इससे दिक्कत होती है और बहुत से लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वो फिर तमाम इलाज ढूंढते हैं, ऑपरेशन कराते हैं वगैरह वगैरह, हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं या विग लगाते हैं. लेकिन महिलाओं में जैसा कि जाहिर है कि उनको बालों के लिए थोड़ी ज्यादा चिंता होती है तो उन्हें ज्यादा बुरा लगता है. पुरुषों में तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ये आदमी है तो इसके बाल कम हो गए हैं 50-60 साल की उम्र के बाद. तो उसकी तरफ आते हैं अंबर जी, महिलाओं में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो मैं कह रहा था कि पुरुषों में 30 साल की उम्र पर 30% और 50 साल की उम्र पर आधे से ज्यादा लोगों को यह तकलीफ हो जाती है. महिलाओं में भी ये जो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है. महिलाओं में आमतौर पर सिर के बिल्कुल ऊपर की तरफ टॉप पर जो है बाल हल्के हल्के काफी कम हो जाते हैं, गंजापन भी हो सकता है, और फिर और जनरल थिनिंग होती है. तो उनके पूरे बाल जो हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं, थिन हो जाते हैं. तो मान लीजिए अगर आप चोटी बांधती हैं फॉर एग्जांपल जो महिलाएं, तो वो चोटी आप देखें कि जब वो 17-18-20 साल की थी तो वो काफी मोटी और घनी होती थी, और फिर जैसे जैसे उम्र कम होती है धीरे धीरे बालों की थिकनेस जो है वो कम होती है. और अगर आप उसी महिला को 50 साल या 60 साल की उम्र में देखेंगे तो उनकी चोटी काफी पतली होगी, उतनी घनी नहीं होगी. तो ये जाहिर है. आमतौर पर मेनोपॉज के बाद जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं महिलाओं में तो ये बाल जो है थोड़े ज्यादा झड़ने लगते हैं. खास तौर पर हमें यह देखना है कि महिलाओं में अगर ऐसा होता है तो उन्हें एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें बाल कम हो जाते हैं. खास तौर पर दो, एक तो ये कि आयरन की कमी, तो आपको अगर लोहे की कमी है आपके शरीर में तो आपके बाल हल्के होने शुरू हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं. और दूसरा, अगर आपकी थायराइड ग्लैंड खासतौर पर महिलाओं में वो अंडर एक्टिव है, कम हो रही है, कम काम कर रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है. तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब आप खूब सारा आयरन की गोलियां खानी शुरू कर दें या थायराइड की गोली खानी शुरू कर दें. आप ब्लड टेस्ट करवाएं अपने जीपी से बात करके, और अगर इन दोनों ब्लड टेस्ट में कोई ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल है तब तो उसका इलाज हो सकता है. लेकिन अगर वो नॉर्मल है तो फिर आमतौर पर उसका और कोई इलाज नहीं है. इलाज की तरफ हम आगे आएंगे. वजह क्या होती है अंबर जी बाल कम होने की? तो बाल जो है हेयर फॉलिकल में बनते हैं. हेयर फॉलिकल एक जैसे छोटी छोटी थैली तरह की, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा सा पाउच होता है जो आपकी स्किन के अंदर होता है, और उसके अंदर जो है बाल जो है बढ़ता है. और हर बाल तकरीबन उसकी उम्र जो होती है लगभग 3 साल होती है एक बाल की, और वो फिर 3 साल के बाद आम तौर पर झड़ जाता है और उसकी जगह दूसरा बाल आ जाता है. ये जो साइकिल होता है कि बाल बढ़ता है, फिर वो झड़ जाता है, फिर उसमें से नया आता है, ये पूरी लाइफ चलता है महिलाओं में भी और पुरुषों में भी. तो हर समय आपकी, और लेकिन ऐसा इकट्ठा नहीं होता, ये नहीं होता कि आज आपके सारे बाल एक साथ झड़ जाएंगे और फिर 3 साल तक नए बाल रहेंगे और फिर झड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता. तो हर रोज आपके कुछ ना कुछ बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं और हर रोज नए बाल निकलने शुरू होते हैं. तो ये साइकिल बना रहता है. पुरुषों में क्या होता है कि ये आमतौर पर जो है ये फॉलिकल्स जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं उम्र के साथ, और उनके जो बाल होते हैं वो फिर पतले होते हैं, ज़्यादा घने नहीं होते हैं. और बाल जो है नया बाल वो 3 साल तक नहीं रहता है, वो जल्दी झड़ जाता है और उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है. इसकी वजह ये होती है अंबर जी कि जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से ये बालों के ऊपर असर होता है. तो ये पुरुषों में होता है, लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन है हम जानते हैं कि ये महिलाओं में भी होता है, और कई बार महिलाओं में थोड़ा ज्यादा सिक्रीट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, और तब भी जो है उनको थोड़ा ये गंजापन होने लगता है. तो ये एक और ब्लड टेस्ट है जो अगर महिलाओं में ये गंजापन मेल पैटर्न टाइप का गंजापन हो रहा है, बॉल्डनेस हो रही है, तो उन्हें टेस्टोस्टेरोन का चेक भी कराना चाहिए अपने जीपी के साथ. जैसा मैंने बताया आयरन की कमी है या थायराइड की है, उसी तरह से टेस्टोस्टेरोन की एक्सेस तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होती है उसमें हो जाता है. तो उसका भी एक आसान सा ब्लड टेस्ट है जो आपके जीपी कर सकते हैं। तो महिलाओं को अगर ये प्रॉब्लम है तो वो अपने जीपी से बात करें और एक बार ये टेस्ट करा लें। लेकिन एक बार हो गया और ये नॉर्मल है तो फिर वो चीजें नहीं है और उसका फिर आगे और इलाज ढूंढना मुश्किल है और वजह ढूंढना मुश्किल है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये टेस्ट नॉर्मल है तो अब और टेस्ट कराएं फिर और टेस्ट कराएं, ऐसा नहीं है। तो पुरुषों को हम जानते हैं कि महिलाओं की तरह उनको भी काफी लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि वो गंजे हैं, उनका मूड, उनकी वेलबींग, उनको डिप्रेशन भी हो जाता है, उनका जो है कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम होने लगता है। तो आमतौर पर अगर ऐसा कुछ है और आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ वाकई पर खराब हो रही है तो आपको काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए। आप जीपी से अपने पूछ कर बात कर सकते हैं, वो आपको काउंसलिंग में रेफर कर सकते हैं या आप अपने आप को सेल्फ रेफर कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। अगर आपके सिर पर बाल कम हैं तो सनबर्न, अगर आप धूप में जाएंगे तो जाहिर है कि बाल आपको बचाते हैं धूप से जलने में स्किन को, तो जो स्किन को सन से डैमेज होती है वहां पर अगर आपका गंजापन है तो आप जरूर या तो हैट लगा कर रखें या कोई सन टैन जो लोशन होता है वो लगा कर रखें। ट्रीटमेंट के लिए अंबर जी इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, थोड़े से ट्रीटमेंट है उनके बारे में बताता हूँ पुरुषों के लिए। तो एक तो यह है कि नो ट्रीटमेंट, ये नॉर्मल प्रोसेस है। जैसा मैंने बताया 50 साल के बाद आधे से ज्यादा लोगों को ये हो जाता है, तो आप ट्रीटमेंट की कोई जरूरत उस सेंस में नहीं है कि ये कोई बीमारी नहीं है कि इसका हमें इलाज करना है वरना हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इसका हेल्थ से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप इसमें कोई ऑयल, कोई किसी तरह का तेल, चाहे वो कोई मेडिसिन के रूप में हो, चाहे वो कोई देसी इलाज हो, या तरह तरह की कंपनियों के काफी महंगे 100-150-200 pounds तक की क्रीम्स और जेल्स और ऑयल वगैरह आते हैं, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो आम तौर पर लोगों को उससे कोई फायदा नहीं होता है, वो लगाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं कि इससे फायदा नहीं हुआ। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं तो आप थोड़ा स्टाइल अपना चेंज कर सकते हैं, आप बाल ऐसे रख सकते हैं कि उसमें गंजापन झलके नहीं वगैरह वगैरह, और आप जो है विग लगा सकते हैं, हैट लगा कर रख सकते हैं। दवाओं पर अगर हम आए तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए दो दवाएं हैं अंबर जी, लेकिन ये दोनों दवाएं आपके जीपी इसको बारे में आपको सलाह दे सकते हैं लेकिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। एनएचएस पर हमको मना है कि हम उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखें। तो आपको ये केमिस्ट से डायरेक्ट भी मिल जाती हैं बिना जीपी को दिखाए, और या आप जीपी को दिखाकर जो है उनसे सलाह लेकर और फिर केमिस्ट से ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके फुल पैसे देने होंगे। वो प्रिस्क्रिप्शन कॉस्ट पर नहीं होती हैं, महंगी होती हैं ये दवाएं, और आपको उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। एक तो गोलियां हैं, फिनेस्टेराइड के नाम से गोली आती है, और जो है इसको लंबे समय तक, ये जो दो इलाज हैं, एक फिनेस्टेराइड की टैबलेट है, एक मिनोक्सिडिल का जेल या लोशन होता है जिसे बालों पर लगाया जाता है, और फिनेस्टेराइड की गोली होती है जो खाई जाती है। तो ये दोनों में जो है एक तो इलाज लंबा है, ये जल्दी ऐसा नहीं है कि आपने आज लगाया तो अगले हफ्ते आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। फिनेस्टेराइड के लिए हम कहते हैं कि 4 महीने लगते हैं कि आपको पता भी चले कि कोई फायदा हो रहा है कि नहीं, और 1-2 साल तक आपको जो है खानी पड़ेगी, तब फुल हो सकता है कि आपके बाल वापस आए। और उसमें ये जो ट्रीटमेंट है, अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये सिर्फ तब तक काम करता है जब तक आप इसे यूज कर रहे हैं। तो ये गोली खाना आप बंद कर देंगे या मिनोक्सिडिल जो आप लगा रहे हैं वो बंद कर देंगे तो फिर जो है ये बाल फिर झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपको कंटिन्यूसली ये मेडिसिन लेनी होती है और आपको इसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है टैबलेट का, फिनेस्टेराइड का, ये आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के जीपी से नहीं मिलेगी। मिनोक्सिडिल लोशन जो है वो आपको जीपी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकता है। लोशन जो है आपको लगाना होता है सिर के ऊपर, और 5% का जो होता है और 2% का होता है मिनोक्सिडिल, 5% वाला ज्यादा फायदा करता है। इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप अपने केमिस्ट से डायरेक्ट ले सकते हैं और इसको लगाते हैं। कई बार महिलाओं में भी जब ये थोड़े बाल जो उनके मेल पैटर्न टाइप के बॉलनेस होती है तो वो भी कई बार मिनोक्सिडिल लगाती हैं, हालांकि जो टैबलेट है वो शायद उनको नहीं दी जाएगी। और बाकी फिर इसके बाद इलाज होते हैं जिन लोगों को काफी ये होता है और उन्हें काफी उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होती है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, स्कैल्प फ्लैप्स हैं, कई तरह के हैं, काफी महंगे हैं, ये आपको प्रॉपर सर्जन से ऑपरेशन कराने होते हैं, ये NHS पर नहीं होते हैं, फ्री में इसका इलाज नहीं होता है, आपको इसकी फुल प्राइवेट फीस देनी होती है और ये काफी महंगे होते हैं और सक्सेस भी 100% नहीं है। तो इसमें बालों के लिए सबसे बड़ी बात जो मुझे कहनी है वो यही कि आपको कोई भी कहे कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, चाहे वो कोई किसी और पैथी वाले हों, होम्योपैथी या कोई भी, या अगर आपको कोई किसी हेल्थ शॉप में या किसी आपके हेयर सैलून या बार्बर की दुकान पर आपको कोई दवा मिल रही है तो आप ट्राई करना चाहें तो उसे कर लें, लेकिन ये मानकर मत चलें कि इलाज है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर इलाज होता तो वो साइंटिफिकली डॉक्टर्स भी उसको बता रहे होते कि आपको आप इसको लें। तो उसमें आप पैसे खर्च करने से पहले सोच लें कि इसका नतीजा आना आमतौर पर ना के बराबर बहुत मुश्किल है, तभी उसके बाद भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो फिर आप ट्राई करें। तो जो दो दवाएं मैंने बताई कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए पुरुषों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं, तो उसमें जो लोशन है उसका नाम है मिनोक्सिडिल, रीगेन के नाम से उसका जो ब्रांड नेम होता है, रीगेन कहते हैं उसको, REGAIN, या शायद एक ई भी हो उसके एंड में, मिनोक्सिडिल। और जो गोली होती है उसे कहते हैं फिनेस्टेराइड। फिनेस्टेराइड आपको केमिस्ट से नहीं मिल सकती है, वो आपको GP ही देंगे और वो पुरुषों को ही दी जाती है, महिलाओं के लिए नहीं है। मिनोक्सिडिल कई बार महिलाएं यूज करती हैं उसको, ऑल्दो कितना फायदा होता है महिलाओं में शायद पक्का नहीं है उसका। एक कंडीशन होती है अंबर जी जो सुनी नहीं होगी हमने, क्योंकि बहुत टेक्निकल नेम है ये, इसको कहते हैं टीलोजन एफ्लुवियम। तो बड़ा ये ग्रीक लैटिन टाइप का सुनता हुआ सा नाम है ये, लेकिन इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये हेयर लॉस है, बाल का झड़ रहे हैं और ये साधारण है, नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो ये जनरल थिनिंग ऑफ हेयर है, जैसा हमने बताया कि उम्र के साथ बाल हमेशा कम होते हैं, ऐसा बहुत रेयर किसी का होता होगा कि उनकी 18 साल की उम्र पे कम बाल थे और 30-35-40 साल की उम्र पर ज्यादा हों, हमेशा उम्र के साथ कम ही होते हैं बाल। और जैसे मैंने बताया कि हर रोज कुछ न कुछ बाल आपके जो गिरते हैं, आमतौर पर एक बाल की उम्र 3 साल होती है और वो तकरीबन ऑन एन एवरेज, कुछ के ज्यादा बढ़ते हैं कुछ के धीरे उगते हैं, लेकिन आमतौर पर एवरेज देखें तो 1 महीने में 1 सेंटीमीटर बाल की ग्रोथ होती है और 3 साल बाद आमतौर पर वो गिर जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि सब इकट्ठे नहीं झड़ते, हर समय जो बाल हैं वो डिफरेंट स्टेज में होते हैं और एक टाइम पर तकरीबन 1% 100 में से 1 बाल उस पोजीशन में होते हैं कि वो झड़ने वाले होते हैं। तो वही इसीलिए हम देखते हैं कि आप जब भी बाल धोते हैं या आपके कंधे पर, आपके कपड़ों पर, आपके बिस्तर पर कुछ बाल हमेशा अक्सर लोगों को दिखते हैं, इसका मतलब है कि हर रोज आपके कुछ ना कुछ बाल झड़ते हैं, जो कि बिल्कुल ये नॉर्मल है। जो टीलोजन इफ्लुवियम है, हेयर लॉस है, ये तब होता है जब नॉर्मल से कुछ ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं, तो लगता है कि आपके बिस्तर पर या आपके तौलिए पर या आपके बाल धोने पर बाथरूम में, आपके शावर में, तो बाल जो हैं ज्यादा झड़ेंगे। और इसमें गंजापन नहीं होता है, बॉल्ड पैचेस नहीं होते हैं कि किसी एक जगह पर कम है, लेकिन पूरे सिर पर जो है बाल थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये आमतौर पर होता है जब कोई मेजर स्ट्रेस होती है बॉडी में, जैसे कि कोई बहुत सीवियर स्ट्रेस हो गया, या महिलाओं में ये स्ट्रेस तो नहीं लेकिन बॉडी को काफ़ी उससे शॉक पहुंचता है, तो ये चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा होता है तो काफ़ी बड़ा शरीर के लिए वो एक इवेंट होता है, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है आपका, कोई एक्सीडेंट है, कोई बीमारी हो गई है, तो आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि उस दौरान जब बच्चे का जन्म होता है या कोई बड़ी सर्जरी हुई है या आप बहुत बीमार रहे हैं, तो उस दौरान जो है बाल उगने जो है कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। और जो पुराने बाल हैं आपके, जो ओल्डर हैं, जो इनकी उम्र 3 साल के आसपास वैसे भी होने वाली है, तो वो थोड़ा जल्दी झड़ जाते हैं अपनी टाइम से पहले ही। तो उस समय के दौरान कुछ महीनों में आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं और फिर धीरे धीरे वो कुछ समय बाद नए बाल आने लगते हैं और फिर ये नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं कुछ समय के लिए लेकिन वो बाद में ठीक हो जाते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसमें अगर ये काफी समय तक चल रहा है। तो जैसा मैंने बताया, खासतौर पर महिलाओं में, कि अगर आपको लगता है कि बाल ज्यादा झड़ रहे हैं और हल्के ही होते जा रहे हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर को दिखाकर ये ब्लड टेस्ट करा सकते हैं कि पता लगे कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अगर वो ब्लड टेस्ट नॉर्मल होते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल पैटर्न है और ऐसा ही होता है। तो आपके बाल झड़ते हैं फिर आते हैं, झड़ते हैं फिर आते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ धीरे धीरे वो कम ही होते हैं, वो बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये टीलोजन एफ्लुवियम है अंबर जी, और ये काफी कॉमन होता है और लोग इससे काफी परेशान होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये बता दूं। एक चीज और है कि ये जो मैंने अभी बाल के कम होने की या गंजेपन की या बाल झड़ने की बात की, तो इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि उसकी स्किन जो है, आपके सिर की जो त्वचा है, स्कैल्प जो है, वो हेल्दी है। अगर आपको पैचेस हो गए हैं स्किन के ऊपर, उसमें बाल बिल्कुल झड़ गए हैं, गंजापन हो गया है, या हल्के हो गए हैं उस एरिया में बाल, लेकिन त्वचा भी नॉर्मल नहीं है, अगर उसमें लाली है, कोई खुरदुरी है, या उसमें दाने हैं या कुछ है, तो वो फिर कोई और स्किन की बीमारी हो सकती है। तो अगर आपके बाल कम होने के साथ साथ जो आपकी स्कैल्प है, उसमें जो पैच है, उस पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप फिर अपने जीपी को दिखाएं कि उसमें स्किन की क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया हम गंजेपन को कहते हैं और एरियाटा माने वो एक एरिया में होती है। इसमें आमतौर पर क्या होता है कि एक पैच बनता है आपके सिर के ऊपर, लेकिन वो शरीर में कहीं भी हो सकती है। तो पुरुषों में कई बार वो दाढ़ी के चेहरे पर भी हो जाती है या सीने पर हो जाती है। तो जहां भी बाल होते हैं वहां पर ये एक एरिया होता है जिसमें उस हिस्से के सारे बाल जो हैं झड़ जाते हैं, लेकिन उसकी स्किन अंदर से बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो अगर आप देखेंगे तो दूर से एक बिल्कुल जैसे सर्कल सा, एक गोला सा होगा, जिसकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल होगी, लेकिन उसमें आमतौर पर कोई भी एक भी बाल नहीं होगा, टोटल बॉल्डनेस होगी उस पैच में। बहुत रेयर लोगों में कई बार ऐसा होता है कि टोटल बॉल्डनेस हो जाती है, तो उनके सारे बाल चले जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये कम होता है। तो एलोपेशिया एराटा जो होता है, ये कुछ लोगों में होता है, कम होता है, हम कहते हैं कि 10,000 लोगों में से तकरीबन 15 को होता है, तो 1% से भी कम है ये। और लेकिन हम लोग इसको देखते हैं क्योंकि जाहिर है कि बालों का विषय है और लोग जल्दी इससे परेशान भी होते हैं, तो जैसे ही ये कोई शुरू होता है तो लोग इसको जरूर हमें दिखाते हैं और दिखाना भी चाहिए। किसी भी उम्र पर हो सकता है, बचपन में हो जाता है, बच्चों को भी हो जाता है, और आमतौर पर कम उम्र में शुरू होता है, 40 साल की उम्र से पहले होता है। पुरुषों में और महिलाओं में, मैन एंड विमेन, इक्वली होता है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ज्यादा होगा या महिलाओं में ज्यादा होगा। और कई बार आपको नहीं पता लगता है तो कोई और आपको, जो खड़ा आपके बालों को देख रहा है, आपका कोई दोस्त या फैमिली, या आपके अगर हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, तो कई बार वो आपको बताते हैं कि ये देखिए क्या है। आमतौर पर जैसा मैंने बताया, वहां की स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है। आमतौर पर कभी कभी हो सकता है कि उसमें हल्की सी इंची फीलिंग हो, लेकिन आमतौर पर यह नॉर्मल होती है। तो ये एक पैच हो सकता है या एक से ज्यादा पैच भी हो सकते हैं। आमतौर पर गोल होते हैं और जैसे एक बड़ा कोई सिक्का हो, सिक्के के साइज के होते हैं, और काफी तेजी से बढ़ते हैं। महीनों में होने वाली चीज नहीं है, कुछ ही दिनों में अगर होना है तो ये तेजी के साथ हो जाता है। महिलाओं में भी हो सकता है जैसे हमने बताया, पुरुषों में भी होता है। और ये जब हो जाता है तो आमतौर पर अधिकतर लोगों में इसमें जो बाल हुए वो कुछ महीनों में धीरे धीरे अपने आप आ जाते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है कि जब इसमें नए बाल आने शुरू हों तो वो सफ़ेद या ग्रे हों, लेकिन धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। कई बार ये बढ़ने लगता है कि एक पैच हुआ है और फिर कुछ हफ्ते बाद दूसरा पैच भी आपको हो सकता है, और पैच फिर आपस में मिलने भी लग सकते हैं, मर्ज होकर बड़ा हिस्सा बना लेते हैं। ये शरीर के दूसरों हिस्सों में भी हो सकता है, बॉडी हेयर में, आपकी दाढ़ी में, आपके भवों में, आईब्राउज में और आई लैशेज में, पलकों के बालों में भी हो सकता है, लेकिन ये कम होता है, लेकिन हो सकता है वहां पर। कई बार ये पूरे बाल चले जाते हैं, कि तमाम बाल एक साथ चले जाते हैं और शरीर पर कोई भी बाल नहीं होता है, इसे हम कहते हैं एलोपेशिया टोटालिस, यानी उनके टोटली बाल सब चले जाते हैं। ये काफी रेयर होता है लेकिन देखा गया है। और कई बार शरीर के पूरे सारे बाल चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, यानी कि पूरे शरीर में कोई भी बाल नहीं होगा, सब चले जाते हैं एक साथ। कुछ लोगों में नाखून भी अफेक्टेड होते हैं और नाखूनों में गड्ढे गड्ढे से पड़ जाते हैं या लाइनें पड़ जाती हैं। तो ये होता क्यों है अंबर जी? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है. ऑटो इम्यून डिजीज हम लोग बहुत सी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसमें आपकी खुद की शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है, वो अपने आप को ही अटैक करने लगती है. तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो आपका जो हेयर फॉलिकल है, जहां से हेयर बनते हैं, उसको डैमेज करता है और फिर वो बाल उस जगह से सारे झड़ जाते हैं. ये कई बार किसी इलनेस से ट्रिगर हो जाता है. आप बीमार रहे हों, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो उससे ट्रिगर हो जाता है. और अगर आपको एलोपेशिया एराटा है तो कई बार आपको और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं जो कि ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारियां होती हैं, परनीशियस एनीमिया है, या विटिलिगो है, सफ़ेद दाग जिसे कहते हैं, तो वो भी ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं. और हम अक्सर देखते हैं कि अगर ये आपको ज़्यादा तकलीफ है एलोपेशिया या एराटा से, तो हम इन बीमारियों के लिए भी थोड़ा टेस्ट करा लेते हैं कि कहीं आपको ऐसा है तो नहीं. तो इसका पता कैसे लगता है अंबर जी? डायग्नोसिस कैसे होता है? कोई टेस्ट की जरूरत है? तो आमतौर पर हमें इसके टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है. सभी जीपीस को आपके डॉक्टर जो हैं बहुत आसानी से पहचान लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ये एलोपेशिया एराटा है. कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि स्किन में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और पता नहीं लग रहा है कि ये स्किन की डिजीज है कि कोई एलोपेशिया है, तो कई बार स्किन का बायोप्सी वगैरह ली जा सकती है. और अगर हमें ये देखना है कि और किसी बीमारी से ये रिलेटेड तो नहीं है, तो फिर हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं. लेकिन वो ब्लड टेस्ट इस बीमारी के लिए नहीं है, इसके लिए हमें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है. तो इलाज इसका अंबर जी बहुत आसान है. आम तौर पर जो इसके छोटे मोटे केस होते हैं, आपको इलाज करें या ना करें, कुछ महीने से लेकर साल तक में ये बाल वापस आ जाते हैं. लेकिन इसमें जो है लोग काफी ऑब्वियसली टेंशन होता है, तो वो इंतजार नहीं करते हैं इसका कि हमें एक साल तक रुकना है. तो कई बार वो कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट करें. तो इसके इलाज के लिए आम तौर पर अगर आप इलाज ना भी करें तो एक साल के अंदर 80% से ज्यादा चांस होता है कि ये बाल आपके वापस आ जाएंगे. लेकिन कई बार जो है लोग कहते हैं कि इसका हमें कुछ इलाज करना है, तो फिर उसके लिए हम उनको स्टीरॉयड का एक लोशन देते हैं कई बार लगाने के लिए, कि वो उस पैच पर ही, पूरी जगह पर नहीं, सिर्फ उस पैच पर वो लगाएं. अगर काफी बड़ा होता है और वो काफी परेशान होते हैं तो कई बार स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी उस एरिया में लगाया जाता है, जो गंजेपन का एरिया है उसमें वो इंजेक्शन लगाया जाता है. नॉट ट्रीटिंग इज एन ऑप्शन. तो आपको ट्रीटमेंट उसका ना करें, कोई जरूरी नहीं है, आप इसे छोड़ दें, तो आम तौर पर जो है ये बाल जो है वापस आ जाएंगे. अगेन मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि हमने देखा है कि बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह का इसके लिए इलाज बेचते हैं. तो आप जरा ध्यान से रहें कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, और आप ओपिनियन ले लें, और तब आप जाकर जो है, अगर आपको पैसा खर्च करना ही है तो आप लें. लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन मेडिकल ट्रीटमेंट इसके कोई खास नहीं है. उसके सिर्फ यही है कि स्टीरॉयड इंजेक्शन है, या ये टॉपिकल स्टीरॉयड है, या ये जो मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन जो मैंने मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए मैंने बताया, वो भी देखा गया है कि किसी किसी को ये फायदा करता है. और ये NHS पर जैसा मैंने बताया नहीं है, आपको केमिस्ट से लेना होता है इसको. तो आप इसको लगा सकते हैं उस पैच पर. मिनोक्सिडिल इसका नाम है, रीगेन भी कहते हैं इसको, मिनोक्सिडिल. और ये जैसा मैंने बताया पुरुषों के लिए होता है, लेकिन कुछ महिलाएं भी इसको कभी यूज करती हैं और उसे देखा गया है कि उनको भी थोड़ा इससे कभी फायदा हो जाता है. तो आप,
तो महिलाओं के लिए अलग से कुछ नहीं
और
है?
कोई ट्रीटमेंट नहीं है अंबर जी. ये जो बाल झड़ने का या गंजेपन होने का, जैसा मैंने बताया, कोई ज्यादा इलाज है नहीं, तो ये कर सकते हैं. और इसके बाद वो लोग जिनको ये बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है, पूरे बाल ही चले जाते हैं या उन्हें काफी तकलीफ होती है, तो उनको फिर हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हैं. तो वो फिर आगे काफी और जो थोड़ी हाई ग्रेड की दवाएं हैं, लेकिन वो आम तौर पर एक दो पैचेस के लिए, छोटे पैचेस के लिए नहीं दिया जाता है. तो ये जो है एलोपेशिया एराटा के बारे में. तो इसमें भी अंबर जी हम जैसा कि देखते हैं कि लोग जाहिर है कि बालों को लेकर काफी परेशान होते हैं. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने जीपी से बात करें. लेकिन अगर आपके चेकअप होने के बाद और आपके ब्लड टेस्ट भी हो गए हैं और आपको बता दिया गया है कि कोई बीमारी से संबंधित नहीं है, तो थोड़ा सा हमें इसमें एक्सेप्टेंस भी रखनी होगी कि ये इसका कोई इलाज अभी तक जाहिर नहीं है और आप इधर उधर जाकर अपना पैसा और वक्त, और ना सिर्फ पैसे की बात है बल्कि आप उसको इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि ठीक होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है और फिर नहीं होता है तो नाउम्मीदी होती है, तो पैसे के अलावा नाउम्मीदी का भी ये कारण बन सकता है। और मैंने देखा है कि कई लोगों ने इसके ऊपर हजारों पाउंड खर्च किए हैं लेकिन जिस चीज का कोई इलाज नहीं है उसका नहीं है, ये मानकर चलना चाहिए।
एक सवाल और यहाँ पर, जैसे कि हमारे ज्यादातर लिसनर्स का ये कहना होता है कि वो डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर उनको कहता है कि कांट डू एनीथिंग, कि ये शायद स्ट्रेस रिलेटेड है, तो व्हाट कैन वी डू इन अ सिचुएशन वेयर द डॉक्टर डजंट गिव अस एनीथिंग।
तो अंबर जी, जैसा मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास कोई इन्होंने इलाज छुपा कर रखा है और वो आपको दे नहीं रहे हैं या आपको परेशान करना चाहते हैं। हम जो इतनी देर से कह रहे हैं कि जो बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है, या तो वो किसी बीमारी से रिलेटेड है, तो वो थायराइड की कमी है आपको, आयरन की कमी है और कोई प्रॉब्लम है, तब तो उसका इलाज है। लेकिन अगर वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपके बाल कम हो रहे हैं तो उसका कोई इलाज है नहीं। और अगर मेल पैटर्न बॉल्डनेस है तो जैसा हमने बताया, मिनोक्सिडिल या फिनेस्टेराइड की गोलियां जो आपको प्राइवेटली लेनी होती हैं वो NHS पर नहीं मिलती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहें कि खासतौर पर महिलाओं में मैंने देखा है, वो एक दो बार तो महिलाएं मेरे पास अपनी पुरानी फोटो लेकर आई हैं कि देखिए जब मैं 20 साल की थी तो मेरी इतनी मोटी चोटी होती थी, अब मेरे बाल कम हो गए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक चीज है और ऐसा ही सबके साथ होता है। बहुत रेयर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो जिनके बाल 40, 50, 60, 70 साल की उम्र में भी उतने ही हैं जितने यंग एज में थे, तो वो लोग एबनॉर्मल हैं किसी वजह से, उनके बाल जो बचे हुए हैं, तो ये आपको मान के चलना है कि वो स्पेशल हैं। आम तौर पर जो लोग हैं उनके साथ यही होना है कि उनके बाल कम ही होने हैं। तो आप इसको मान के चलेंगे तो फिर आप ज्यादा इलाज ढूंढने नहीं जाएंगे, और इलाज ढूंढने नहीं जाएंगे तो परेशान नहीं होंगे क्योंकि इलाज कोई है नहीं।
क्योंकि एक इशारा शायद इन लोगों का इस तरफ भी है कि उनको ओवर द काउंटर वाली दवाओं में ही ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि जाहिर बात है डॉक्टर तो जैसा आपने भी कहा कि नहीं देगा।
दवाएं है ही नहीं अंबर जी, सिर्फ दो दवाएं हैं और वो दोनों दवाएं भी आपको खरीदनी पड़ती हैं, डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं
जी।
ओवर द काउंटर तो अब आप किसी के पास जाएंगे तो उसकी तो दुकान है, उसके पास तो तमाम सामान है बेचने के लिए, और वो बिल्कुल बेचेंगे, वो आपको नाउम्मीद होकर आपकी जेब से जितने पैसे निकाल पाएंगे आपको से जरूर लेंगे वो, उनका काम ही है, ये दुकान इसीलिए खोलकर बैठे हैं।
हमारे पास डेढ़ मिनट में हम क्या कह सकते हैं?
तो डेढ़ मिनट में ये अंबर जी कि कोविड का अभी भी ध्यान रखें, रिस्ट्रिक्शंस खुल चुके हैं, अच्छी बात है, अब हम लोगों के घर जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी प्रिकॉशन रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाएं, जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, और वैक्सीन अगर आपने अभी तक नहीं लगवाई है तो प्लीज 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 पहली, और अगर आपको 8 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं पहली लगे हुए तो दूसरी भी जरूर लगवा लें। और बल्कि सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मेरी तरफ से पर्सनली कि आप एक मिशन बनाएं कि हर रोज आपको एक दो लोगों को पूछना है कि आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं, और जिन्हें नहीं लगवानी है उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाकर ये वैक्सीन जरूर लगवाएं, जबरदस्ती नहीं, प्यार से जी। तो ये भला काम आप मेरे लिए प्लीज करें कि जिनको वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है उन्हें जरूर लगवाएं।
चलें, हम उम्मीद करते हैं कि इससे अगर एक भी बंदे को फायदा होता है तो मेहनत जो है वो सार्थक हो जाती है, माहौल को हल्का फुल्का रखते हुए। बस यहीं पर हम आज की बातचीत को खत्म करते हैं, और आखिरी 30 सेकंड में और क्या कहा जा सकता है डॉक्टर साहब?
बस अंबर जी, स्किन की बातचीत अब खत्म हो गई है, अनलेस कोई और सवाल आते हैं या किसी को कोई टॉपिक आता है तो आप पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते से अंबर जी हम विटामिन्स के बारे में बात करते हैं, स्किन के दौरान भी हमने विटामिन्स की कुछ बात की, तो उसे किए हुए कई साल, मेरे ख्याल से 2 साल हो रहे हैं, हमने पहले ये बात की थी, तो विटामिन ए से लेकर और आगे तक जाएंगे, फिर ABCD से होते हुए जी।
जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन जो है वो किसी प्रिस्क्रिप्शन पे या बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती, उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो चलिए, अब उसको तो आज हम रहने ही देते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। एंड हमारी एक बहन को थोड़ी सी शिकायत रह गई है कि उनको अलग से कुछ वो जो है ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता चल सका है, और जो आपने बताया कि वो पुरुषों के लिए है लेकिन महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो उनका बस वही प्रश्न है महिलाओं के लिए अलग से क्यों नहीं, तो अब इसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं हम
जी। अभी उसका इलाज नहीं हुआ है, उसका अभी तक इन्वेंशन नहीं हुआ है, वो तक बनी नहीं है अंबर जी, तो बनेगी और वो प्रूव हो जाएगी कि साइंटिफिकली वो काम करती है तो मैं जरूर बताऊंगा।
चले ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अब भी अगर कोई सवाल बाकी है health@sabrasradio.com या फिर sabrasradio63 मेल्टन रोड लेस्टर LE4 6PN बाहर, डॉक्टर राजीव वाधवा जी का नाम जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे लिए है AMBER, तो डॉक्टर साहब मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, इतनी सारी जानकारी के लिए। एंड यू हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीक अहेड।